ஹரி கிருஷ்ண. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 2 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 21. கிருபையா இன் பவித்ர சப்தோ கோ மேரே சாத் சாத் உச்சாரண கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேதே ஹே, வேதா விநாசினம் நித்யம் யஏனம் மஜமவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்த கம் காதயதி ஹந்திகம். வேதா விநாசினம் நித்யம் யஏனம் அஜமவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்த கம் காதயதி ஹந்திகம். வேதா விநாசினம் நித்யம் யஏனம் அஜமவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்த கம் காதயதி ஹந்திகம். வேதா விநாசினம் நித்யம் யஏனம் அஜமவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்த கம் காதயதி ஹந்திகம். शब्द का अर्थ देखिए. वेद मतलब जाना जाता है, अविनाशी नम यानी कि अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो, एनम इस यानी आत्मा को, अजम अजन्मा अव्यय निर्विकार, कथम फिर कैसे, स व पुरुष पुरुष पार्थ हे पार्थ, कम घातयति किसको मारवाता है, हंति मारा जाता है किसको. अनुवाद देखिए. हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है. इन पवित्र शब्दों को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साकृजातं सहकणरघुनाथन्वितं तं सजीवम्, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitansa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchanam Gaurange Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Bhayascha Kripasindubhya Evascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadharam Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Shrimad Bhagavad Gita Mata Ki Jai Ho Granthraj Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai Ho आज हमें भगवान आत्मा के विषय में अधिक बता रहे हैं क्योंकि पहले भगवान ने इससे पहले भगवान ने क्या बताया श्लोक नंबर 20 में भगवान ने कहा अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो कि ये अजन्मा है नित्य है शाश्वत है पुराण है और ये अजन्मा है यानी कि इसका कभी जन्म नहीं हुआ है नित्य है ये कभी भी मतलब मरेगी नहीं इटर्नल है स्थाई है इसका कभी नाश नहीं हो सकता है तो आगे भगवान इसी बात को भगवान क्योंकि डायरेक्ट से चल रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण अभी इसी बात को बता रहे हैं वेदा विनाशिनम नित्यम अब जब तुम्हें मैंने बता दिया कि वो नित्य है अजम है और अविनाशी है उसका कभी नाश नहीं होगा जब तुम ये जान लोगे नित्यम वेदा विनाशिनम वेदा मतलब जब जो व्यक्ति इसको जान जाता है कि आत्मा अविनाशी है और एनम अजम अव्ययम ये अजम है यानी अजन्मा है शाश्वत है अव्यय मतलब इसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है चेंजिंग भी नहीं आती है जब वो जान लेता है उसके बाद कथम स पुरुष पार्थ फिर वो इंसान वो कार्य कैसे कर सकता है कौन सा कार्य घातयति हंतिकम कम घातयति किस तरह मार सकता है किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पिछली वाली चार क्वालिटीज जो आत्मा की हैं उसी के विषय में बता रहे हैं वेदा पहला है अविनाशिनम अविनाशिनम मतलब अविनाशी है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता ठीक है दूसरी क्या है नित्यम कि ये नित्य है शुरू से है इसका कोई स्टार्ट नहीं है ये एनम अजम ये अजन्मा है कभी भी जन्म नहीं लेती है ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा होगा कि वो मर जाएगी या जन्म लेगी ऐसा नहीं और अव्यय इसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं आती है विकार नहीं आता ये चारों क्वालिटीज पहले भी भगवान ने बताई अब वापस से बता रहा है भगवान इसलिए बता रहे हैं वापस से क्योंकि अब किसी को ये पता चल जाएगा तो फिर जब ये चार क्वालिटीज किसी को पता चल जाएंगी फिर ये चार कार्य कैसे कर सकता है कौन से चार कार्य पहला है कथम कथम स पुरुष माना कैसे वो इंसान को सा जिसको पता चल जाएगा कथम माना कैसे कम कम का मतलब होता है किसको अब किसको मारेगा वो आत्मा तो ना दिखती है ना पैदा होती है ना जन्म लेती है ना मरती है तो कैसे मारेगा यानी कि पहले ही बता दिया उसका विनाश संभव नहीं है तो कैसे होगा और कम माना किसको मारेगा आत्मा को मारेगा घातयति मरवाता है तीसरा क्वेश्चन कैसे मरवाता है और मरता है कि ना वो मर सकता है ना मार सकता है क्योंकि पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया था श्लोक नंबर 19 में यएनम वेति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम जो समझता है कि आत्मा मरा हुआ समझता है या ये समझता है कि मारने वाला है दोनों ही अज्ञानी फिर आज भगवान वापस बता रहे हैं कि जब वो मरता भी नहीं है, मारता भी नहीं है, तो कैसे कोई उसको, कैसे कोई किसी को मार सकता है या मर सकता है, ये चीजें भगवान यहाँ पर बता रहे। और ये श्लोक जो है वो रिलेटेड है अर्जुन के उस दुख के लिए, क्योंकि अर्जुन बहुत दुख कर रहे थे। श्लोक नंबर 1.44 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा था, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम अद्वयम। भगवान कृष्ण को कहा, कैसा अफसोस की बात है, ये कितने आश्चर्य की बात है कि हम बोला भगवान को, व्यवसिता वयम, वयम का मतलब होता है आप भी मेरा साथ दे रहे हो इतने बड़े अपराध में, मैं तो कर ही रहा हूँ, और ये भगवान को कह रहे हैं कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राजसुख लोभ की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुल्य है, यानी कि अपने ही संबंधियों को मार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं आज कि जो ये जानता है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी, अजन्मा है, अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मार सकता है, मुझे तो पता है, मैं तो पहले से जानता हूँ और अभी तुम्हें भी बता दिया। अब यानी कि मारने और मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य पालन है ताकि धर्म की स्थापना हो सके। मारना और मरना यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई मैंने आतंक क्रिएट करने के लिए ये युद्ध नहीं रचा है, ये युद्ध केवल धर्म की स्थापना के लिए है और अधर्मियों का शरीर नाश करने के लिए है, ताकि उन्हें एक तो जैसे युद्ध में जो मरेंगे तो क्या होगा, वो या तो डायरेक्ट से स्वर्ग में जाएंगे या फिर मुक्ति को प्राप्त होंगे या फिर कम से कम ऐसी जगह पर उनका जन्म होगा कि भक्ति कर सके। तो इन सबके लिए फायदा है, इनको, इनके साथ अहिंसा नहीं की जा रही है इनको, बल्कि और भी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा तो इनके लिए और भी फायदेमंद है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जो भी चीजें हैं संसार में, जो कुछ भी है, उसका कोई ना कोई यूज होता है, किसी न किसी प्रकार से उसको, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, उसको उसका राइट यूज किया जा सकता है। और ज्ञानी और अज्ञानी में क्या डिफरेंस है कि जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु को कैसे और किस तरह, कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है। अब वस्तु होती है सबके पास, लेकिन उसका यूज करना किसी किसी को आता है उसको श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञानी कहते हैं। हर चीज का मिस यूज भी हो सकता है और राइट यूज भी हो सकता है। ज्ञान का मतलब क्या है कि आप उसी चीज को सही तरह से यूज करना सीखो। इसी प्रकार हिंसा का भी अपनी, हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। हिंसा यानी किसी को मारना, तशद्दुद करना, किसी की हत्या करना, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका भी एक अपना सदुपयोग है। इसको भी, हिंसा भी एक सही तरीके से की जा सकती है, उसका राइट यूज कैसे है और इसका उपयोग इससे जानने वाले पर निर्भर करता है कि जिसको ज्ञान होगा कि हिंसा कहाँ पर करनी चाहिए तो उसको पता होगा कि मुझे यहाँ पर करनी चाहिए। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय हिंसता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है। अब अदालत में जब कोई मर्डरर, जिसने किसी का मर्डर किया होता है, उसको ले जाया जाता है तो जो जज है वो उसको प्राण दंड देता है, उसको क्या बोलता है कि इसको फांसी पर लटका दिया जाता है या फिर इसको मृत्यु दंड दिया जाता है, हैंग टिल डेथ, है ना। तो फिर उसको दंड दिया किसने, जज ने, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता। लेकिन कोई ये नहीं बोलता, हालांकि देखो उस अपराधी ने भी किसी को मरवाया था, जज भी उसको मरवा रहा है, लेकिन फिर भी जज को कोई ये नहीं कहता कि इसने भी कत्ल किया है या इसने कत्ल करवाया है, क्योंकि न्याय हिंसा न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा की जाने का आदेश है। यानी कि जो कानून के अनुसार, कानून को हाथ में नहीं लेता है बल्कि कानून के अनुसार जो कार्य करता है तो उसका आदेश है मनुष्यों को विधि ग्रंथ मनुसंहिता में, मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनुसंहिता। मनुसंहिता में क्या है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि मनुष्यों को किस तरह से कार्य करना होता है। इसका समर्थन किया गया है कि हथियार को, हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए। जिसने किसी की हत्या की है यानी हत्या के दंड में उसको प्राणदंड देना होता है, ये शास्त्र कहता है। अब ये हर कोई तो नहीं देगा ना दंड, सिर्फ वही देगा जिस जो के जज है, अदालत में फैसला करता है वही देगा। हर कोई एक दूसरे को मारते तो नहीं फिरेंगे। लिखा हुआ है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे फायदा क्या होगा, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। इसी संसार में ही उसको उसका दंड मिल गया तो नेक्स्ट जीवन में वो फिर अपना जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जी सकता है। इस कम अज कम उस अपराध का उसको दंड नहीं मिलेगा जिसका दंड उसको कानून द्वारा मिल गया है। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। अब राजा ने या कानून ने दंड दे दिया तो उसके लिए फायदेमंद है ना कि यहीं पर हो गया उसका हिसाब किताब पूरा, आगे जाकर उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए, या फिर संसार में वापस नहीं मरना पड़ेगा। जिससे अब वरना तो क्या होता है, आपने जिसकी हत्या की है नेक्स्ट जन्म में वो उसकी आपकी हत्या करेगा तो फिर तो इस तरह चक्कर चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन अगर कानून के अनुसार आपको हत्या का दंड मिल गया तो फिर उसका दंड वापस आपको दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। तो ये श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये तो और भी उसके लिए फायदेमंद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस उपदेश का पालन करना, पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही खास बात बता रहे हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य था युद्ध करना, वो तो एक साइड पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, अब कृष्ण परम न्यायाधीश हैं और अगर वो आदेश दे रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है। ये जो मारने का जो क्रिया होगी ना अभी युद्ध में वो सबसे बड़ा इंसाफ है और इस तरह अर्जुन का इस आदेश का पालन करना ये समझ करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को तो मारा जा ही नहीं सकता है। तो कृष्ण ने जो बताया है करने के लिए कार्य वो कभी खराब या गलत हो ही नहीं सकता, उसका परिणाम कभी गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि आदेश किसका है, परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण का। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कथम सपुरुष पार्थ, एक तो तुम्हें ये बता दिया कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती है, नित्य है, अविनाशी है, और कथम फिर वो इंसान जिसको ये पता चल जाए कम किस तरह से, अब किस तरह से किसको मारेगा, जो आत्मा है जो दिखती नहीं है, इतनी छोटी है कि जिसको देखा नहीं जा सक रहा है, उसको घातयति कैसे मार सकता है या हंतिकम या मरवा सकता है। तो दोष का या पाप का या अपराध का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आत्मा को तो आप मार ही नहीं सक रहे हो और हिंसा ये जो हो रही है वो हिंसा परम न्याय है क्योंकि न्यायाधीश जब कोई है ना ऑर्डर करता है किसी को फांसी देने का उसको भी कभी है ना अपराध नहीं लगता है। तो हमारे पास तो परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण का आदेश है तो फिर आपको तो कभी भी, एक तो पहले से आप क्षत्रिय हो, अपराध का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्षत्रिय का कार्य है अधर्मियों का नाश करना, ऊपर से आपको युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर है श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझ कर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है, यानी कि न्याय के लिए, इंसाफ के लिए पुनः धर्म की स्थापना के लिए ये हिंसा अनिवार्य है, करनी पड़ेगी ना, वरना अगर राजा या क्षत्रिय लोग दंड नहीं देंगे तो अपराधी जो लोग होंगे ना, वो तो उनका तो अपराध इतना बढ़ जाएगा कि संसार में खाली अपराध। आज अपराध अगर कहीं पर नहीं होता है, या क्योंकि मनुष्य जीव मात्र की नेचर है कि गलती करने की, ठीक है, लेकिन वो नहीं करता है गलती, उसकी दो वजह है। एक वजह क्या है कि वो अपराध के परिणाम से डरता है, और दूसरी वजह क्या है कि वो भगवान से प्रेम करता है। अब भगवान से प्रेम करना, वो तो चलो भक्त लोग अपराध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं कि कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो भक्त नहीं है, साधारण प्राणी यदि अपराध से बचते हैं या अपराध करने से डरते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो कानून से सजा नहीं पाना चाहते, वो ये नहीं चाहते कि हमें सजा मिले, सजा से बचना चाहते हैं, इसीलिए अपराध नहीं करते। कानून सजा नहीं देगा, चलो ठीक है वो, या फिर क्या होता है कि नरक से डरते हैं, चलो ठीक है कानून से अगर बच भी गए तो भी नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए बचते हैं। संसार में मुझे ना दुख नहीं भोगना पड़े और मरने के बाद भी दुख ना भोगना पड़े, इसीलिए सब लोग अपराध से बचते हैं। लेकिन अगर क्षत्रिय या कानून अपना कार्य करना छोड़ दे और किसी भी मुजरिम को सजा ना दे, जिसने भी खून किया है या जिसने भी अपराध किया है, उसको बस ये सोच के छोड़ दे कि मैं क्यों खामखा मारूं किसी को, तो फिर तो सारे संसार में सिर्फ अपराध ही अपराध होने लगेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ करना है। जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें भी उसके शरीर को काटा जाता है और फिर वापस से उसको सही करके बना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको मारना है, रोगी को मारना नहीं है, उसके रोग को खत्म करना है ताकि वो बिल्कुल वापस से स्वस्थ हो जाए। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, ये कोई अज्ञानता नहीं है, ऐसे नहीं है कि बस उठाए हथियार और मारते जाओ, ये पूरा ज्ञान है, वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, तो उससे पाप फल की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने दो मिसालें दी है, एक तो कानून की, कि जब कानून के जो न्यायाधीश है वो ऑर्डर करता है तो फिर अगर किसी को फांसी दी जाती है तो वो हत्या नहीं होती है, बल्कि क्या होता है उसका, उसके लिए लाभप्रद होता है क्योंकि उसका अपराध का उसको दंड मिल गया, आगे नहीं भोगना पड़ेगा। और दूसरा, डॉक्टर जब सर्जरी करता है, यानी कि जब अर्जुन ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ युद्ध कर रहा है, तो जब मरेंगे तो उसके साथ क्या होगा, उसका मकसद मारना नहीं है बल्कि उनके रोग को खत्म करना है, क्योंकि आत्मा तो मरेगी नहीं, उसको तो दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक लोक में देना पड़ेगा या भौतिक लोक में लेना पड़ेगा, जब तक वो भगवान से मृत्यु नहीं है, या फिर भगवान, क्योंकि डायरेक्ट से अब भगवान के सामने जिसके मृत्यु होने वाली है, जाहिर सी बात है उस युद्ध क्षेत्र में कृष्ण भी थे, तो हर लिहाज से चारों ओर से फायदा है, क्योंकि अर्जुन ने क्या बताया था, न च श्रेयान अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे, न कांक्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता, यानी कि मुझे कहीं पर भी इसमें अच्छाई नहीं दिख रही है ना, क्योंकि मुझे राज्य चाहिए और ना ही इन सबको मारने से ही मुझे अपराध इतना लगेगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो सारी तरफ से ये अपराध युक्त युद्ध है, मैं नहीं करना चाहता। और आज भगवान इसे बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, उसको तो कभी कोई मार ही नहीं सकता। और अगर कोई अपने कर्तव्य को पूरा करता है, यानी कि जिस तरह मिसाल दी जज की, तो कर्तव्य को पूरा करता है तो भी उसको फायदा है, और दूसरा यदि शल्य क्रिया यानी सर्जरी से किसी का रोग खत्म कर दिया जाता है तो भी उसके लिए फायदा है। तो आपका तो हर तरफ से फायदा है, मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, जिएंगे तो अच्छा जन्म लेंगे और धार्मिक बनेंगे, हर तरीके से फायदा है आपको, क्यों हर तरह से खराब लग रहा है, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप की संभाव नहीं है, संभाव नहीं है कि उसमें कोई अपराध की भावना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।